ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। निताई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं। ततो जय मुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद एकादश अध्याय श्लोक संख्या 12। दोहराइए। सरित्तिरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथावय रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालके वृषम्। सरित्तिरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथावय रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालके वृषम्। सरित्तिरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथावय रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालके वृषम्। सरित्तिरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथावयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालके वृषम्। શબ્દાર્થ સરિત તીર નદી કે કિનારે ગતમ ગયે હુએ કૃષ્ણમ કૃષ્ણ કો ભગ્ન અર્જુનમ યમલાર્જુન ખંડિત કરને કી લીલા કે બાદ અથ તબ આહવયત બુલાયા રામું ચ તથા બલરામ કો રોહિણી બલરામ કી માતા ને દેવી લક્ષ્મી ક્રીડંતમ ખેલ મી વ્યત બાલકે અનેક બાળકો કે સાથ વિષમ અત્યંત મનોયોગ સે અનુવાદ એવમ તાત્પર્ય કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ જેથી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદજી કે દ્વારા શ્રી પ્રભુપાદ કી અનુવાદ યમલાર્જુન વૃક્ષો કે ઉખડ જાને કે બાદ એક બાર રોહિણી દેવી રામ તથા કૃષ્ણ કો જો નદી કે કિનારે ગયે હુએ થે ઓર અન્ય બાળકો કે સાથ બડે ધ્યાન સે ખેલ રહે થે બુલાને ગઈ તાત્પર્ય यद्यपि रोहिणी देवी बलराम की माता थी किंतु माता यशोदा रोहिणी की अपेक्षा कृष्ण तथा बलराम से अधिक अनुरक्त थी। माता यशोदा ने रोहिणी को भेजा कि वे राम तथा कृष्ण को उनके खेल से बुला लाए, क्योंकि दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। अतः रोहिणी देवी उन्हें अपना खेलना छोड़कर आने के लिए बुलाने गई। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं ये तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। परम सौभाग्य कि हम सबको ये भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से शुरू में ही क्यों निकल गया।
भगवान की उन दिव्य लीला का श्रवण कीर्तन करने का सु अवसर प्राप्त हो रहा है। वैष्णव तोषणीकार तथा अन्य आचार्य गण का मत है कि यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की उन दिव्य लीला, भगवान अब थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी तक तो घर में ही खेल चल रहा था, लेकिन अब कल आप सब ने सुना, हम सब ने सुना कि भगवान उन फल बेचने वाले के पास धान्य लेकर चले गए, है ना? तो द्वार पर अब जाने लगे हैं। इसी के अंतर्गत अब सुखदेव गोस्वामी इसके 3-4 दिन के बाद की लीला का हम सबको श्रवण करा रहे हैं। कल के श्लोक में एक बहुत बड़ा सुंदर सिद्धांत था जो गृहस्थ भक्तों के लिए स्मरणीय है। हम सब की यही प्रायः मांग रहती है कि पहले भगवान कुछ दे दे, इसके बाद हम कुछ दे देंगे, लेकिन यह सिद्धांत कल सुंदर प्रभुपाद जी ने तत्व पर ही सब बात की है कि भगवान को एक बार कोई देंगे, भगवान के निकट को एक बार जाने का प्रयास मात्र करेंगे तो भगवान भर देते हैं। जो भी चाहिए, धन संपत्ति मान ऐश्वर्य इत्यादि जो भी चाहिए, भक्त एक बार सिर्फ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान सामने चाहे, भगवान को हमारी कोई नहीं, तो बेस्ती बेस्ती वहां पर गई भगवान के पास, है ना? तो भगवान ने उनकी सारी जो टोकरी थी वो रत्नों से भर गई। लेकिन लीला के माध्यम से वैष्णव तोषणीकार और इत्यादि आचार्यों के माध्यम से अगर देखा जाए, लीला में अगर जाया जाए, तो लीला के अंदर बहुत सुंदर भाव है इसका। भगवान को फल दे दिया, भगवान ने उसको धान्य तो क्या देंगे, लाए थे लेकिन सब गिर गया था धान्य, वैसे के हाथ में थोड़ी ना रहेगा। जय श्री राधा गिरधारी की जय, जगन्नाथ बोलदेव सुभद्रा जी की, तो कुछ रहा नहीं था, लेकिन उनका सौंदर्य कुछ दे दिया, फल दे दिया। तो फल देने मात्र से रत्नों से भर गया उनका जो सारा टोकरी था वो सब। तब यशोदा जी वहां पर आई और यशोदा जी ने कहा कि अब तुम जाओ यहां से, तुम्हारा फल खाली हो गया। तो भगवान ने रत्नों से जड़ित एक माला उनको दी थी गले में, उस माला पर, उन रत्नों पर, उन गहने पर नजर नहीं थी उन भीलनी की। अब श्याम सुंदर की झांकी में उनकी जो आंख थी वो अटक गई, तो उनको देखे बिना तो रहा नहीं जाता था, क्या करें। तो उन्होंने खुद अपनी गले की माला जो श्याम सुंदर ने दी थी वो तोड़ दी। तो तोड़ इसलिए थी कि वहां पर जो भी मोती गिरेंगे तो उसको बिखरने में, उसको इकट्ठा करने में जितना टाइम लगेगा, उस समय तक तो मैं श्याम सुंदर को देखूंगी कम से कम, यह भाव था। मनोभाव क्या था, मोती तोड़ने का मोती से कोई मतलब नहीं था, श्याम सुंदर को देखने का भाव था। तो मोती की माला तो गिर गई, यशोदा ने कहा कि फिर क्या हुआ, क्यों नहीं जाती हो? तो बोल रहे कि मोती आपस में, मोती की माला टूट गई है तो फिर भी उसकी दृष्टि हट नहीं रही थी, श्याम सुंदर को देख लिया तो देख लिया। तो बड़ी अद्भुत लीला थी, लीला के माध्यम से भी बहुत आचार्यों ने बहुत रस का आस्वादन कराया है। इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी 3-4 दिन के बाद की लीला कह रहे हैं। यही सौभाग्य है उन झांकी को मन में रखना, हृदय में रखना, पढ़ना, सुनना, उसका पद जो भी संतों ने आचार्यों ने गाया है, यही सिद्धि है। सिद्धि क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, इसके बाद भी ब्रह्म को जान लिया उसके बाद भी कुछ बाकी रह जाता है। इसके बाद कहा मद भक्ति लभते परम, वैष्णव प्रेमियों का संग प्राप्त करने के बाद ही पराभक्ति भगवत प्रेम प्राप्त होता है, अन्यथा तत्वदर्शियों को भी भगवान का दर्शन हो जाए यह संभव नहीं है। बहुत बड़ा सिद्धांत है। चक्रवर्ती बाद इस श्लोक की टीका में लिख रहे हैं कि माता रोहिणी से बढ़कर भी माता यशोदा का भाव है, उस भाव को प्रकाशित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी इस लीला का गान कर रहे हैं। यद्यपि व्रज में सभी माताओं का भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, तथापि उन सब में यशोदा माता का रोहिणी से भी बढ़कर प्रेम है, उस बात को प्रकाशित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं। इस लीला और सुखदेव गोस्वामी जो ने जो इस लीला हरित तीरगतम यमुना के तट पर गए कृष्ण और बलराम, उनके बीच में गर्ग संहिता में एक लीला दी गई है। दुर्वासा जी का मोह भंग, अत्रि और अनसुया जी के पुत्र दुर्वासा जी ने एक बार इच्छा की, उन्होंने सुना कि नंद और यशोदा के घर में परात पर ब्रह्म श्री कृष्ण प्रकट है और राधा रानी को भी देखने के लिए दुर्वासा जी गए थे और यहाँ पर श्याम सुंदर का भी दर्शन करने के लिए आए। तब लाला तो बाहर जाने लगा था। एक दिन की घटना है कि गर्ग आचार्य ने लिखा कि माँ की गोद में खेल रहे थे लाला, तो खेलते खेलते बलराम जी के साथ नदी तट पर यमुना के तट पर चल दिए। तो जब श्रीराम और बलराम बैठे थे तो कृष्ण ने एक मुट्ठी में बालू लेकर दाऊ जी के सर पर डाल दी। ध्यान से सुनना चाहिए। तो दाऊ जी के सिर पर डाली बालू तो सीतामा उसके बगल में बैठे थे, तो सीतामा की आंखों में वो बालू, तो सीतामा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। तो सीतामा जब दौड़ रहे थे कृष्ण आ गए, कृष्ण में भी थोड़ा बल तो आ गया था, तो कृष्ण आ गए और सीताम पीछे। कृष्ण ने सोचा कि यह भी मेरे आंख में बालू डाल देगा, तो कृष्ण ने उस रेती में सो गए, लेट गए, अपनी आंखें दोनों बंद कर दी और सीतामा उसके ऊपर बालू डालने लगे। तब दाऊ जी ने देखा कि कृष्ण को ये हरा रहा है, तो दाऊ जी ने गमछा भरा बालू का और बालू का गमछा लेकर गए और सीतामा पर डाल दिया। तो ऐसे ही खेल चल रहा था तो उसी समय भगवान की ही प्रेरणा से दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी कदम के नीचे बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, तो दुर्वासा जी ने देखा कि ओह ये परात पर ब्रह्म, धूलि धूसर सर्वांग वक्र केशम दिगंबरम, क्या देखा, एक दृश्य देखा, जो दृश्य बड़े बड़े मुनिंद्र योगिंद्र सबको परास्त करता है, सबका तत्व ज्ञान को परास्त करता है कि दिगंबर अवस्था में परात पर ब्रह्म, दिगंबर अवस्था में धूलि धूसर सर्वांग, उसके जितने भी अंग थे, सर पर बालू थे, वक्र केश, केश उसका सजाया हुआ नहीं था, दिगंबर अवस्था में थे, धावंतम बालके साध्यम, बालकों के पीछे दौड़ रहे थे, कभी बालक उसके पीछे दौड़ रहे थे, हरि वीक्ष सविस्मित, और इस अवस्था को देखकर विस्मित हो गए। श्याम सुंदर सामने देख नहीं पाए। देखने के लिए किस उद्देश्य से आए थे? देखने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन देख नहीं पाए। सब लोग भगवान को नहीं देख पाए। बातें नाम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावृत, गीता में भगवान कहते हैं कि योग माया से आवृत रहते हैं। और वही भागवत में सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के 29 के अध्याय में प्रथम श्लोक में कहते हैं कि समावृत योग माया मुपाश्रित, योग माया के आश्रित रहता हूँ। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है, भगवान के साथ कौन कौन खेलेगा, कौन सा स्थल होगा, कौन सा फूल होगा, कौन देख पाएगा, कौन नहीं देख पाएगा, क्या आयोजन करना है, क्या नहीं करना है, किसको बुलाना है, जितने भी जितनी प्रकार से भी जो जो भी वस्तुएं जो जो भी है, वो सब योग माया का काम है, योग माया कार्य करती है। लेकिन वहां पर बहुत बड़ा सिद्धांत दिया गया है कि तत्वदर्शी भी मल विक्षेप और आवरण, वो तत्व की बात है, उनमें तीन विक्षेप रहता है, इसलिए नहीं देख पाते जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक। तो यहां पर खेल चल रहा था, वहां पर देख रहे थे और उन्होंने मन में विचार किया कि स ईश्वर हो एम भगवान, क्या यही ईश्वर है? जिन्हें लोग परात्पर 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 कहते रहते, क्या यह ईश्वर है? कथम बाल लूठम भूवे, ये तो दिगंबर अवस्था में धरती पर बालू में नंगा घूम रहा है, नंगा लेट रहा है। अयम तो नंद पुत्रोस्ति न कृष्ण परात्पर, यह तो नंद का ही पुत्र है, यह परात्पर कृष्ण नहीं है। मन में संदेह उत्पन्न हो गया, शंका उत्पन्न हो गया। गरुड़ जी को भी शंका उत्पन्न हो गई थी, संदेह उत्पन्न। काकभूषणी के पास गया, काकभूषणी को भी संदेह उत्पन्न हो गया था, ये नहीं है। मिलाप करने लगे परात्पर ब्रह्म के लक्षण और कृष्ण का जो दृश्य दिखाई दे रहा था, उन दोनों में मिलाप करने लगे। तो कृष्ण तो अपने आप में पूर्ण है, वो सच्चिदानंदमय स्व सुख में रमण करते, और ये बालकों के साथ खेलकर सुख ले रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? अर्थात ये नहीं हो सकता। इसी मन में शंका कुशंका बनी रही और यहाँ पर श्रीदाम बलराम कृष्ण का खेल चलता है। तो श्रीदाम और कृष्ण ने कहा कि कौन जीता और कौन हारा, तो ते कौन करेगा? तो सीतामा ने कहा कि वो बाबा, ए कृष्ण, वो बाबा दिख रहा है, कदम के नीचे शांत खड़े थे। पहली बार मैंने गर्ग संहिता में पढ़ा कि दुर्वासा जी शांत खड़े थे, वरना वो और परशुराम दोनों को भी शांत नहीं रहते। तो शांत खड़े थे, असमंजस में थे, क्या करे क्या न करे, शंका हो गई, मोह उत्पन्न हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, चलो चलते हैं, उस बाबा को पूछते हैं। वो बाबा देखता है कि वही निर्णय कर पाएंगे कौन जीता और कौन हारा। तो गए दोनों, लेकिन भगवान की भी अद्भुत लीला है, भगवान भी अद्भुत नटखट है। जैसे जैसे भगवान से रामचंद्र जी निकट आने लगे, दुर्वासा जी रोमांच कंपाश्र होने लगे। महाराज जनक की भी यही हालत हुई थी, जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी में गए, तो जनकपुर वहां पर देखने के लिए जनक महाराज आए, और जनक महाराज ने जब पहली बार राम को देखा, तब उनके मन में भी ऐसा रोमांच हुआ था। लेकिन ये प्रसंग अलग है। तो दुर्वासा जी ने देखा, क्या देखा? कि दुर्वासा जी की तपस्या का जो तेज है, वो पूरे का पूरा तेज भगवान श्री कृष्ण के अंग में समाया जा रहा है। और जैसे जैसे भगवान निकट आ गए, शंका कुशंका बढ़ती रही। सीताम ने कहा कि बाबा आप निर्णय कीजिए कौन जीता और कौन हारा। तो कुछ बोले नहीं, दोबारा कहा, लेकिन कैसे बोलेंगे, ये तो दूसरे राज्य में पहुंच गए थे, वो तो वहां पर थे ही नहीं, उनका मन तो चकडोल पे था, हिंडोले पर झूल रहा था, शंका रूपी हिंडोले पर झूल रहा था उसका मन, कौन निर्णय करेगा? तो कृष्ण ने कहा कि बाबा गूंगा होगा या तो मौन धारण किए होंगे, कौन बोलेगा? तो कृष्ण की बात सुनकर उनके हृदय में खलबलाहट हो गई और वहां पर बालू में ही गिर गए, बैठ गए। जब वह बैठ गए तो कृष्ण भी उसकी गोद में बैठ गए और दाढ़ी पकड़कर बाबा को पूछा कि ए बाबा। लेकिन बाबा बोले कैसे, बोले ही नहीं। कृष्ण खड़े हो गए, भगवान से वार्तालाप हो गया, भगवान का स्पर्श हो गया। अब भगवान हंसे, खड़खड़ाहट जब भगवान हंसे तो दुर्वासा जी के मन में जो शंका थी उस शंका को निवारण करने के लिए भगवान हंसे। और जब भगवान हंसे कि दुर्वासा जी उनके मुख के भीतर चले गए, योग माया ने उसका मुख बंद कर दिया। सेम घटना रामायण में काक भूषणी जी, भगवान जब रामचंद्र जी अपने आंगन में खेल रहे थे तो भगवान के हाथ में एक पूरी दी थी माँ कौशल्या ने, तो काक भूषणी जी ने काक के रूप में से तो ले लिया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान जब दूर जाते थे तो रोते थे राम, और जब काक भूषणी जी जब दूर जाते थे पूरी लेकर तो भगवान रोते थे, और जब निकट आते थे तो हंसते थे। काक भूषणी जी को शंका हो गया कि ये थोड़ी ना पर ब्रह्म होगा, तो भगवान ने वहां पर जमाई लिया और काक भूषणी जी अंदर। काक भूषणी जी गए, क्या देखा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सप्त द्वीप अनंत अनंत ब्रह्मांड, यही सेम वर्णन जो गर्ग संहिता में है वहां पर है, इसलिए दुर्वासा जी के प्रसंग में ही मैं वर्णन कर देता। तो जब दुर्वासा जी गए भगवान के मुख में तो बहुत गहरा जंगल देखा, इसके बाद पानी देखा, इसके बाद सप्तद्वीप सप्त पाताल देखा, अनंत करोड़ों ब्रह्मांडों बिंदु की लहर की तरह देखा, समाधि लग गई। बहुत बहुत वहां वर्णन है, 10-12 श्लोकों में क्या क्या देखा, समाधि लग गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक छिद्र था, वह छिद्र से वह घुसे, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, वह छिद्र से घुसे तो कहाँ पहुंच गए, गोलोक में पहुंच गए, वहां पर गोवर्धन है, वहां पर अनंत कोटि गोपिकाएं वहां जय ध्वनि कर रहे हैं, वहां श्रीदाम है, वहां बलराम है, वहां सब कुछ उन्होंने देखा। और जब देख लिया तो वहां पर देखते देखते जब भगवान कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण फिर हंस रहे हैं, तो फिर जब हंसे तो दुर्वासा जी बाहर आ गए। तो वहां पर जो उन्होंने देखा था वही यहाँ पर भी देख रहे थे, वही कृष्णा है, वही यमुना है। वही श्रीदाम है, मोह भंग हो गया। भगवान को ऐश्वर्य दिखाना था, दुर्वासा जी को ऐश्वर्य, और दुर्वासा जी क्या किए, अब क्या करेंगे, भगवान की स्तुति 3 श्लोकों में वहां पर स्तुति कर रहे हैं, और भगवान ने इशारा किया कि अब आपका मोह भंग हो गया है, आपकी शंका कुशंका हो गया है, अब आप चले जाइए, लीला में विक्षेप मत कीजिए। कृष्ण कृष्ण करके बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। बद्रिका आश्रम की ओर क्यों गए, ध्यान तपस्या करने के नहीं, अब तो क्या तपस्या करे, अब तो भगवान का सुंदर व दृश्य दिगंबर अवस्था, वो केश बिखरे हुए केश, वो धूली धूसरित अंग, उन अंगों का श्रवण कीर्तन करने के लिए बद्रिका आश्रम में चले गए। तो ऐसे ही भगवान की लीला चल रही थी। भगवान यमुना तट पर 12 बज गए, माँ यशोदा ने बुलाया उसको, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए, माँ ने दूध पिलाया और भगवान सो गए, वहां तक वहां पर वर्णन है। इसके अंतर्गत श्री सूरदास जी 2 लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि आज तो भगवान 12-1 बजे तक खेल रहे थे, लेकिन कभी कभी भगवान 9-10 बजे आ जाते थे, और कभी कभी जाते ही नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे, क्यों जल्दी आते थे, क्योंकि भगवान जब हार जाते थे तब भगवान जल्दी वापस आ जाते थे। एक बहुत बड़ा सुंदर दृश्य श्री सूरदास जी ने कहा है कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, क्या कह रहा है कि मोसो कहत मोल की लीनो तू जसुमति कब जायो। माता ने पूछा कि क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि तू तो मोल का लाया हुआ है, तू थोड़ी ना जसुमति का पुत्र है। इसीलिए मैं खेल को नहीं जाता हूँ, कहा कहो इस में मारे खेलन को नहीं जात। यही मुझे बहुत बड़ा बुरा लगता है, इसी बात को लेकर मैं खेलने के लिए नहीं जाता हूं। और क्या कहता है, पुनी पुनी कहत कौन है, माता को है तेरो साथ। और बार बार यह कहता है, बोल बता तेरी माता कौन है, तेरा पिता कौन है, क्योंकि नंद और यशोदा तेरे माता पिता नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, तो कहते गोरे नंद यशोदा गोरे सूकत श्यामल गात। नंद बाबा गोरा है, यशोदा भी गोरी है, तो तू कैसे काला हो सकता है। इसका अर्थ यही होता है कि तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, तू कहीं बाहर से आया हुआ है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कान। और चुटकी बजा कर ताली बजा कर सब लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, और दाऊ जी भी इसमें प्रमुख है, तो मैं कैसे जाऊं। तू मोही को मारन सीखी दाऊ जी कब न खींच। तू जब भी डांटती है तो मुझे ही डांटते है, दाऊ जी को कभी आज तक डांटा ऐसा नहीं हुआ, मुझे क्यों डांटती है, दाऊ जी को तो कुछ कहती नहीं है। मोहन मुख रिस की ये बातें झसुमती सुनी सुनी लीजिए। हम लोगों को यह अनुभव है जो गृहस्थ है ब्रह्मचारी को यह लाभ नहीं मिलता है। बालक की जो तोतली भाषा है वो तोतली भाषा इतनी मीठी लगती है, इतनी मीठी लगती है, तो कभी कभी कंधे पर बालक बिठा कर अगर सुसु भी कर जाए तो ऐसा लगता है ओ गंगा जल में आज स्नान हो गया। तो भगवान परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण जब तोतली भाषा में माता यशोदा को कहते होंगे तब कितना मधुर लगता होगा। तो माता उस बात को सुनकर रीझ जाती थी, सुनो कान बलभद्र सबाई जन्मति जन्मत ही को। तो माता ने उसको आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया, सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तुपुत। हे श्याम सुंदर मैं तेरे को कह देती हूँ, गो माता की सौगंध खाकर कहती हूँ, हे पुत्र तू मेरा ही पुत्र है और किसी का पुत्र। तो लाला कहता अच्छा माँ तो ठीक है, अब मैं खेलने के लिए जाऊंगा। तो जब हार जाते थे, जब बच्चे लोग ऐसा हास परिहास करते थे, तो श्याम सुंदर कभी कभी जल्दी आ जाते। उस अंतर्गत ये भाव दिए गए है कि क्यों जल्दी आ जाते थे, क्यों कभी कभी लेट खेलने के बाद आते। तो जल्दी आने का यह सब कारण दिया है कि जब बच्चे लोग ऐसे कहते थे, बच्चे लोग के साथ जब हार जाते थे तब तो जल्दी आ जाते थे, बुलाने नहीं जाना पड़ता था, और जब वह जीतते थे तब माता यशोदा और रोहिणी देवी को बुलाने के लिए जाना पड़ता था कि अब आ जाओ। तब कहते थे माँ और थोड़ी देर, माँ और थोड़ी देर, आज तो मैं जीत रहा हूँ, आज तो मैं जीत रहा हूँ। इसी भाव के अंतर्गत ये सब पद दिए गए। एक बार सूरदास जी एक दूसरी लीला का वर्णन कर रहे हैं। एक बार सब लोग यमुना के तीर पर खेल रहे थे, तो दाऊ जी और श्रीदाम सब एक तरह हो गए और कहने लगे श्री कृष्ण को, देव कृष्ण डरा रहे थे, बाघ आया सिंह आया जुजवा आया, और वो सब कहीं बड़े थे कहीं पर चढ़ जाते और कृष्ण अकेले रोते रहते थे। तो फिर मूड खराब हो गया, तो आए रोहिणी। अब रोहिणी के पास आया कि मैया दाऊजी सीधा और सब मुझे भय दिखा रहे हैं। तो रोहिणी जी ने कहा कि तुझे भय लगता है। श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा हाँ मैया मुझे भी भय तो लगता है। तो रोहिणी जी देवी ने उसके छाती पर हाथ रखा तो मैया ने देखा कि धक 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 हो रहा है, जैसे भय में कोई हो। भगवान जी तरह तरह की लीला कर रहे हैं। तो यह बात सुनकर मैया को भी लगा कि हाँ कन्हैया को थोड़ा भय तो लग ही रहा है। योग माया से आवरे थे, वो जानती है लेकिन मानती नहीं। यह अर्थ नहीं है व्रतवासी नहीं जानते, नहीं जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो क्या किया, सब ब्राह्मणों को बुलाया। ये प्रसंग में देखिए, जब जब भगवान श्री कृष्ण पर संकट आने की संभावना हुई तब तब यशोदा मैया ने नंद बाबा ने रोहिणी जी ने एक ही कार्य किया। क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, स्वस्तिवासन कराते हैं, गो का दान कराते हैं और महाप्रसाद गोविंद। यहां से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है हम सबको। अगर कुछ भी चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कुछ भी संकट आ जाए तो हम सबका एक ही कर्तव्य है, क्या है? वैष्णवों को घर में बुलाकर कथा कीर्तन करना और प्रसाद, बस यही सबसे बड़ी, उसी में सब सफलता है, उसी में सब हो जाएगा। तो कृष्ण का हाथ का स्पर्श गौ के पुष्प को कराकर गौओं का दान दिया, सस्तिवाचन कराया, ब्राह्मणों को भोजन दिया, यथायोग्य दक्षिणा दी, और तब कृष्ण को पूछा कि अब डर लग रहा है कि नहीं माता? अब सब डर चला गया। तो इसी बात की लिंक को मिलाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने अन्य आचार्यों ने कहा है कि अब तीन चार दिन के बाद की एक लीला कह रहे हैं। यह नहीं है कि रोहिणी का प्रेम कम है यशोदा से अन्य, लेकिन फिर भी कुछ भाव प्रकट किए हैं हमारे आचार्यों ने। इस श्लोक में रोहिणी आह्वयत, रोहिणी को बुलाने के लिए भेजा, रोहिणी अर्थात रोहिणी बुलाने के लिए गई। तो एक प्रश्न यहाँ पर होता है, रोहिणी जी क्यों गई? यशोदा हर रोज तो यशोदा जाती है, आज रोहिणी क्यों गई? है ना, रोहिणीम देवीम आह्वयत, अर्थात रोहिणी देवी गई बुलाने के लिए। यशोदा जी ने उनको भेजा क्योंकि जन्म नक्षत्र था। यहाँ पर भी भाव दिया है चक्रवर्ती पाद ने कि जन्म अन्य आचार्यों ने के जन्म नक्षत्र था, शुभ दिन था, इसलिए सभी ब्राह्मणों को इनविटेशन दिया था प्रसाद के लिए अच्छे दिन पर। तो माता यशोदा व्यस्त थी रसोई बनाने में, तो इस भाव से माता यशोदा जी ने कह दिया कि जाओ रोहिणी, आज तो मैं काम में थोड़ी व्यस्त हूँ, अगर मैं जाऊंगी तो ये सब काम अटक जाएगा, आधा काम छोड़ना अच्छा नहीं है, तो इसलिए आप ही बुलाने के लिए जाइए। इसलिए माता रोहिणी आह्वयत, माता रोहिणी गई। और दूसरी शंका यह थी कि भग्न अर्जुन, यमला अर्जुन की जो लीला हुई थी, तो माता के मन में शंका पैदा हो गई कि रोज ना रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, तो न जाने आज भी कुछ न हो, इसलिए समय सर तुम बुलाकर आओ, या तो देख कर बुला लाइए। इसीलिए भग्न अर्जुन सरित तीरम गतम कृष्णम, किस कृष्ण को बुलाने के लिए गए? तो सरित तीरम गतम, जो सरित तीर यमुना के किनारे खेलने के लिए गए थे, उस कृष्ण को किसके साथ? बालकेर भूषम क्रीडंतम, जो बालकों के साथ खेलने के लिए गए थे, उस भगवान श्री कृष्ण को माता रोहिणी ने बुलाया। रोहिणी कहा हे कृष्ण, हे बलराम, आओ इधर। लेकिन कौन सुनेगा, आज तो भाई जीत रहे हैं। तब माता रोहिणी वापस आ गई और माता रोहिणी ने कहा कि कृष्ण और बलराम मुझसे नहीं मानते, वो नहीं आ रहे हैं। आप ही जाओ यशोदा जी, क्योंकि यशोदा जी से ही डरते हैं कृष्ण और बलराम, और अन्य किसी गोपी से नहीं डरते हैं। इसीलिए चक्रवर्ती पाद ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम यशोदा जी का। तो कल और आगे के श्लोक में कोई भक्तगण कहेंगे कि माँ यशोदा अब कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए गए और कृष्ण और बलराम घर पर आ गए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? समय हो गया है 9 बजे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद वांछा कल्पतरु ज्येष्ठ विपाशं पतितानां पावन।